language recordings. देखो सुनो और जियो बाइबल की तस्वीरी कहानी दूसरी किताब खुदा के शहज़ोर मर्द। दोस्तों आदाब, क्या आप एक सच्चे खुदा के मुतल्लिक जानते हैं? आइए मैं आपको ऐसे लोगों के बारे में बताऊं जो खुदा को जानते थे। नारंगी रंग की किताब वाली तस्वीरें देखें। इस इशारे या म्यूजिक के बाद अगली तस्वीर देखें। आइए अब हम शुरू करें। तस्वीर नंबर एक, दो भाई। इस तस्वीर में दो भाई आपस में एक सौदा कर रहे हैं। एक का नाम ईसाऊ है और वो एक माहिर शिकारी है। छोटे भाई का नाम याकूब है और उसने एक मजेदार खाना तैयार किया है, लेकिन वो इसमें से ईसाऊ को नहीं देना चाहता। याकूब ने ईसाऊ से कहा, पहले अपना पहलूठा होने का हक मेरे हाथ बेच दे। उसने अपनी विरासत की परवाह ना की, उसने सिर्फ अपनी भूख का ख्याल किया। चुनाचे उसने सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए अपना पहलूठा होने का हक बेच दिया। याकूब के नाम का मतलब ही धोखाबाज है और दूसरों को धोखा देना भी याकूब की फितरत में शामिल था। हत्ता के याकूब ने अपने बाप से भी धोखा किया। तस्वीर नंबर दो, याकूब का ख्वाब। ईसाऊ याकूब से नफरत करता था और उसे जान से मार देना चाहता था। चुनाचे याकूब अपने घर से भाग खड़ा हुआ। इस तस्वीर में याकूब ख्वाब देख रहा है। उसने खुदा को आसमान में और उसके फरिश्तों को जमीन पर उतरते हुए देखा। खुदा ने याकूब से कहा, मैं ये जमीन तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। खुदा जानता था कि याकूब धोखेबाज है, लेकिन खुदा याकूब को प्यार करता था और वो उसे तब्दील करना चाहता था। इसीलिए उसने उससे ये अजीब और गरीब वादे किए। तस्वीर नंबर तीन, याकूब और लाबिन। याकूब दूसरों को भी धोखा देता रहा, लेकिन कई दफा दूसरे भी उसे धोखा दे जाते। याकूब अपने मामू लाबिन के पास काम करने लगा। वो लाबिन की छोटी बेटी राखिल से शादी करना चाहता था। वो इस लड़की की खातिर 7 बरस तक लाबिन के पास काम करता रहा। तब लाबिन ने धोखे से अपनी बड़ी बेटी याकूब के साथ ब्याह दी। लाबिन ने राखिल की खातिर याकूब को मजीद 7 बरस काम करने पर मजबूर किया। अब याकूब ने लाबिन को धोखा दिया। उसने लाबिन के गल्ले में से अपने लिए बेहतरीन जानवर अलग कर लिए। तब खुदा ने याकूब से कहा, तू अपने बाप के मुल्क में लौट जा। तस्वीर नंबर चार, याकूब की खुदा से मुलाकात। याकूब अपने वतन वापस जाना चाहता था, लेकिन वो ईसाऊ से डरता था। जो दूसरों को धोखा देते हैं उन्हें अक्सर बदले का डर रहता है। एक रात एक शख्स याकूब के पास आया। उसने याकूब के साथ तमाम रात कुश्ती लड़ी। जब सूरज तुलू हो रहा था तो उस शख्स ने याकूब की रान को अंदर से छुआ और रान का जोड़ अलग कर दिया। तब याकूब ने जाना कि यह शख्स खुदा की तरफ से है। अब याकूब मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन उसने कहा, जब तक तू मुझे बरकत न दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। चुनांचे उस शख्स ने याकूब से कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं इसराइल होगा। इसराइल का मतलब है वो शहजादा जिसने खुदा के साथ कुश्ती लड़ी और जोर आजमाई की। खुदा याकूब को, जो के धोखेबाज था, कमजोर करना चाहता था ताकि वो उसे शहजादा बना सके, ताकि उसे तब्दील कर सके। इसराइल सलामती से अपने खानदान में आ गया। वो एक बड़ी कौम का बाप बना जो खुदा की इबादत करती है। अजीजों, जब हम दूसरों को दगा देते हैं तो हम खुदा के तरीकों के खिलाफ जंग करते हैं। लेकिन खुदा ने एक शख्स को भेजा है जो हमें तब्दील कर सकता है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। तस्वीर नंबर 5, यूसुफ का ख्वाब। याकूब यानी इसराइल के 12 बेटे थे। उसका अजीज तरीन बेटा यूसुफ था। याकूब ने यूसुफ को एक खूबसूरत लिबास बनवा कर दिया। यूसुफ के भाई उससे हसद करने लगे। एक रात यूसुफ ने ख्वाब देखा। तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा ख्वाब सुनो, हम सब खेत में पूले बांध रहे हैं। तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले के गिर्द दायरा बना लिया और मेरे पूले के सामने झुककर उसे सजदा किया। भाई बहुत खफा हुए। इसका मतलब यह हुआ कि वो अपने छोटे भाई की ताजीम करेंगे। वो यूसुफ से नफरत करने लगे और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए मौके की तलाश में रहते। तस्वीर नंबर 6, यूसुफ को फरोख्त कर दिया गया। यूसुफ के भाई घर से बहुत दूर अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। याकूब ने यूसुफ से कहा, जा देख तेरे भाइयों और भेड़ बकरियों का क्या हाल है। जब भाइयों ने यूसुफ को अपनी तरफ आते देखा तो उन्होंने उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने उसका खूबसूरत लिबास उतार दिया और उसे एक खुश्क कुएं में डाल दिया। तब उनमें से एक ने कहा, अपने भाई को कत्ल कर देने से हमें क्या हासिल होगा, क्यों ना उसे गुलाम कहकर बेच दें। उसी लम्हे कुछ सौदागर उधर आ निकले। चुनाचे भाइयों ने यूसुफ को चांदी के 20 सिक्कों के एवज बेच दिया। तब उन्होंने उसके लिबास पर बकरे के खून के धब्बे लगा दिए। खून आलूदा लिबास वो अपने बाप के पास ले गए। याकूब को यकीन हो गया कि किसी जंगली दरिंदे ने यूसुफ को फाड़ खाया है और वो गहरे दुख के साथ उसके लिए मातम करता रहा। तस्वीर नंबर 7, यूसुफ और फोतीफार की बीवी। सौदागरों ने यूसुफ को मुल्क मिस्र में ले जाकर फरोख्त कर दिया और उसे एक अमीर शख्स फोतीफार की गुलामी में दे दिया। खुदा यूसुफ के साथ था और जिस काम को वो हाथ लगाता खुदा उसे इकबाल मंद करता। जल्द ही उसे फोतीफार के घर का मुख्तार बना दिया गया। यूसुफ एक हसीन और जमील नौजवान था। फोतीफार की बीवी यूसुफ पर फरिश्ता हो गई, लेकिन यूसुफ उसकी तरफ मायल न हुआ क्योंकि वो जानता था कि ये गलत है। वो उसके घर से भाग निकला, लेकिन उसके लिबास का कुछ हिस्सा फोतीफार की बीवी के हाथ में आ गया। उसने वो कपड़ा अपने शौहर को दिखाते हुए यूसुफ पर इल्जाम लगाया। चुनांचे फोतीफार ने यूसुफ को कैद में डाल दिया। तस्वीर नंबर 8, यूसुफ कैद खाने में। कैद खाने में भी खुदा यूसुफ के साथ था। जल्द ही यूसुफ को सब कैदियों का निगरान बना दिया गया। उन्हीं दिनों बादशाह के सरदार साकी और उसके नान भाई को कैद में डाल दिया गया। एक रात इन दोनों ने ख्वाब देखे। यूसुफ ने उनसे कहा, ताबीर की कुदरत खुदा को है, बहरहाल मुझे वो ख्वाब बताओ। सरदार साकी ने बताया मैंने ख्वाब में देखा कि अंगूर की बेल की तीन शाखें हैं। मैंने अंगूरों को लेकर बादशाह के प्याले में निचोड़ा और वो प्याला बादशाह को पेश किया। यूसुफ ने उससे कहा, इसकी ताबीर यह है कि तीन दिन के अंदर बादशाह तुझे रिहाई दिलाएगा और तुझे फिर से तेरे मनसब पर बहाल कर देगा। नानबाई ने भी अपना ख्वाब सुनाया, लेकिन उसके ख्वाब की ताबीर यह थी कि तीन दिन के अंदर उसका सर काट दिया जाएगा। सरदार साकी को रिहा कर दिया गया और नानबाई का सर, जैसा कि खुदा ने यूसुफ पर जाहिर किया था, तन से जुदा कर दिया गया। लेकिन यूसुफ मजीद 2 साल तक कैद खाने में रहा। तस्वीर नंबर 9, बादशाह का ख्वाब। मिस्र के बादशाह ने भी एक ख्वाब देखा। उसने दरिया के किनारे 7 मोटी गायें देखी। 7 दुबली गायें दरिया से निकली और मोटी गायों को खा गईं। कोई भी बादशाह के ख्वाब की ताबीर न कर सका। उस वक्त सरदार साकी ने बादशाह को यूसुफ के बारे में बताया। बादशाह ने यूसुफ को कैद से बुलवा भेजा। यूसुफ ने बादशाह को ख्वाब की ताबीर बताई। उसने कहा, जो कुछ खुदा करने को है उसने तुझे उससे आगाह कर दिया है। सारे मुल्क मिस्र में 7 बरस तक पैदावार की फरावानी होगी। उसके बाद 7 बरस तक काल पड़ेगा। बादशाह को मालूम हो गया कि यूसुफ में खुदा का रूह है। बस उसने उसे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बना दिया। तस्वीर नंबर 10, यूसुफ की मिस्र पर हुक्मरानी। फरावानी के 7 बरसों में यूसुफ ने गल्ला कसरत से जखीरा किया। जब काल के 7 बरस शुरू हुए, वो अनाज लोगों के हाथ बेचने लगा। उस वक्त यूसुफ के 10 बड़े भाई भी गल्ला लेने के लिए मिस्र में आए। वो नहीं जानते थे कि हुक्मरान यूसुफ ही है, लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया। उसने उन पर जासूसी का इल्जाम लगाकर कैद में डाल दिया। उन्होंने रिहाई के लिए दरखास्त की तो उसने उनसे कहा, अगर तुम सच्चे हो तो अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास लाओ। उसने भाइयों में से एक को कैद में रखा और दूसरों को घर वालों के लिए अनाज ले जाने की इजाजत दे दी। तस्वीर नंबर 11, यूसुफ अपने आप को भाइयों पर जाहिर करता है। यूसुफ के भाई मिस्र वापस जाने से डरते थे, लेकिन उन्हें गल्ले की सख्त जरूरत थी। चुनाचे वो अपने सबसे छोटे भाई बिन्यामीन को साथ लेकर यूसुफ के पास गए। यूसुफ ने अब भी अपने आप को उन पर जाहिर न किया। उसने उन्हें गल्ला दिया, लेकिन उसने कुछ कीमती चीजें भी उनके बोरों में रखवा दी। फिर उसने अपने नौकरों को उनके पीछे भेजा कि उन पर चोरी का इल्जाम लगाकर ले आए। तमाम भाइयों ने यूसुफ के सामने झुककर रहम की इल्तिजा की, बिल्कुल उन पुलों की तरह जिन्हें यूसुफ ने अपने ख्वाब में देखा था। यूसुफ अपने राज को ज्यादा देर तक न छिपा सका। वो बिन्यामीन के गले लगकर बहुत रोया और उसने भाइयों से कहा कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं जिसको तुमने बेच दिया था। भाइयों ने वापस जाकर अपने बाप को बताया, यूसुफ अभी तक जिंदा है और मुल्क मिस्र का हाकिम है। तस्वीर नंबर 12, याकूब और यूसुफ मिस्र में। बूढ़ा याकूब अपना खानदान और अपना मालो असबाब लेकर मिस्र में रिहाइश के लिए रवाना हुआ। यूसुफ को दोबारा देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने यूसुफ के बेटों पर हाथ रखकर बरकत दी ताकि वो इसराइल के कबीलों के सरदार बने, और याकूब मिस्र में बहुत बूढ़ा होकर फौत हुआ। तब यूसुफ के भाई इस बदी की वजह से जो उन्होंने अपने भाई से की थी निहायत डर गए, लेकिन यूसुफ ने उनसे कहा, डरो नहीं, تم نے میرے خلاف بدی کی، لیکن خدا نے اسے نیکی میں تبدیل کر دیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جانیں ہلاکت سے بچ جائیں۔ عزیزو، آسمانی خدا یوسف سے بھی بڑا ہے۔ اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ گناہگاروں اور پاپیوں نے اسے جان سے مارا، لیکن خدا نے ان کے برے کاموں کو ہمارے لیے نیکی بنا دیا۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب خدا ہمارے تمام گناہ معاف کر سکتا ہے، بما ان تمام برائیوں کے جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ ہمیں دائمی موت کی سزا سے نجات دے سکتا ہے۔ دوستو، آئیے اب ہم آپ کو موسیٰ نامی ایک شخص کے بارے بتاتے ہیں۔ موسیٰ ایک شہزور مرد تھا جس نے اپنے لوگوں کو اسیری سے رہائی دلائی تھی۔ وہ ہماری یسوع کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو تمام انسانوں کو شیطان کی غلامی سے نجات دے سکتا ہے۔ جب آپ نارنجی رنگ کی کتاب والی تصویریں دیکھیں تو غور سے سنیں۔ اس اشارے یا میوزک کے بعد اگلی تصویر دیکھیں۔ آئیے اب ہم شروع کریں۔ تصویر نمبر 13، ننا موسیٰ۔ موسیٰ اسرائیل کے قبیلے میں سے تھا۔ وہ یوسف کے 300 سال بعد مصر میں پیدا ہوا۔ مصر کا بادشاہ اسرائیلیوں سے برا سلوک کرتا تھا، وہ ان سے غلاموں کی طرح کام لیتا تھا اور تمام نوزائیدہ لڑکوں کو مروا دیتا۔ جب موسیٰ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اسے چھپا لیا۔ اس نے اسے ایک ٹوکری میں ڈال کر دریا کے کنارے سرکنڈوں میں چھپا دیا۔ اس کی بہن مریم قریب ہی کھڑی دیکھتی رہی۔ بادشاہ کی بیٹی دریا پر غسل کرنے آئی، اس نے ٹوکری میں ننے موسیٰ کو دیکھا۔ موسیٰ رونے لگا، بادشاہ کی بیٹی کو اس پر ترس آیا، اس نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ موسیٰ بادشاہ کے محل میں پل کر جوان ہوا۔ اس نے مصریوں کے تمام طور طریقے سیکھے اور وہ ایک بہت بڑا آدمی بن گیا۔ تصویر نمبر 14، موسیٰ اور جلتی ہوئی جھاڑی۔ ایک دن موسیٰ نے دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی غلام کو مار رہا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، لہذا اس نے مصری کو جان سے مار دیا۔ پھر موسیٰ بادشاہ کے حضور سے بھاگا۔ وہ صحرائے سینا میں 40 برس تک رہا۔ ایک دن اس نے ایک انوکھی چیز دیکھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ خدا جلتی ہوئی جھاڑی میں سے اس سے ہم کلام ہوا۔ میں نے اپنے لوگوں پر ظلم ہوتے دیکھ لیا ہے، میں تجھے مصر کے بادشاہ کے پاس بھیج رہا ہوں تاکہ تو میرے لوگوں کو اس کے ملک سے نکال لائے۔ تصویر نمبر 15، موسیٰ بادشاہ کے پاس جاتا ہے۔ موسیٰ بہت خوف زدہ تھا، لیکن وہ خدا پر بھروسہ رکھتا تھا اور وہ واپس مصر چلا گیا۔ اس کا بھائی ہارون بھی اس کے ساتھ گیا۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میرے لوگوں کو جانے دے۔ بادشاہ نے کہا، میں خدا کو نہیں جانتا اور میں بنی اسرائیل کو جانے بھی نہیں دوں گا۔ تب خدا نے موسیٰ سے کہا، ہارون سے کہے کہ اپنی لاٹھی بادشاہ کے سامنے پھینک دے اور وہ سانپ بن جائے گی۔ ہارون نے خدا کا حکم مانا اور بادشاہ نے خدا کی طاقت دیکھی، لیکن اس نے لوگوں کو نہ جانے دیا۔ बस खुदा ने मिस्रियों पर बहुत सी आफतें भेजी। उसने पानी को खून बना दिया ताकि लोगों को पीने के लिए कुछ न मिले। उसने मेंढकों, मच्छरों, टिड्डियों और ओलों जैसी नागहानी आफतें मिस्र में भेजी। मिस्रियों के सब मवेशी मर गए और वो बीमार हो गए, लेकिन फिर भी बादशाह ने इसराइलियों को न जाने दिया। तस्वीर नंबर 16, कुर्बानी का बर्रा। खुदा मूसा से फिर हम कलाम हुआ और कहा, बनी इसराइल से कहे कि हर खानदान एक बर्रा ले और उसे ज़िबह करे और थोड़ा सा खून लेकर दरवाजों की चौखटों पर लगा दें। मैं मुल्क मिस्र से होकर गुजरूंगा और सब पहलूठों को मार दूंगा, लेकिन मैं उस खून को देखकर बगैर नुकसान पहुंचाए तुम्हारे पास से गुजरूंगा। जैसा खुदा ने फरमाया था वैसे ही किया। मिस्रियों के तमाम पहलूठे हिलाक हो गए। तब बादशाह ने मूसा को बुलाकर कहा, तुम अपने लोगों को लेकर मेरे मुल्क से निकल जाओ और अपने खुदा की इबादत करो। तस्वीर नंबर 17, समुंदर की राह से। मूसा बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल लाया। खुदा बादलों और आग के एक सुतून में होकर उनके आगे आगे चलता था, लेकिन मिस्री बहुत खफा हुए क्योंकि अपने गुलामों से महरूम हो गए थे। बादशाह और उसका सारा लश्कर बनी इसराइल के पीछे रवाना हुआ ताकि वो उन्हें वापस लाएं। बनी इसराइल एक बड़े समुंदर के पास आ गए जिसे वो पार नहीं कर सकते थे। मिस्री उनका पीछा किए चले आ रहे थे, वो बच नहीं सकते थे। मूसा ने बनी इसराइल से कहा, डरो मत, तुम देखोगे कि खुदा तुम्हें बचाने के लिए क्या कुछ करता है। तब खुदा ने समुंदर में एक रास्ता खोल दिया। बनी इसराइल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए। मिस्रियों ने उनका ताकुब किया, लेकिन पानी ने उनको ढांप लिया। तमाम मिस्री समुंदर में गर्क हो गए और बनी इसराइल पार जा निकले। तस्वीर नंबर 18, मन आसमानी खुराक। मूसा लोगों को सहरा में ले गया। उनके पास काफी मिकदार में खाना नहीं था, इसलिए खुदा ने उनके लिए आसमान से खाना भेजा। हर सुबह रोटी की तरह गोल गोल पापड़ियां जमीन पर पड़ी होती, वो उसे मन कहने लगे। हर शाम खुदा बटेरों के झुरमट जमीन पर भेज देता, और जब उनके पास पीने को पानी नहीं था तो खुदा ने मूसा को बताया, अपनी लाठी को चिटान पर मार तो इसमें से पानी बह निकलेगा। और 40 बरस तक खुदा बनी इसराइल को सहरा में खाना मुहैया करता रहा। तस्वीर नंबर 19, मूसा खुदा के पहाड़ पर। बनी इसराइल कोह सीना पर आए और खुदावंद भी गरज चमक आग और बादलों में पहाड़ पर नमूदार हुआ। मूसा पहाड़ की चोटी पर गया और खुदा उससे यूं हम कलाम हुआ, मैं खुदावंद तेरा खुदा हूं, मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को न मानना, किसी तराशी हुई मूरत के आगे सजदा न करना और न उसकी इबादत करना, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा न लेना, सातवें दिन को याद रख कि उसे पाक रखना, अपने बाप और मां की इज्जत करना, खून न करना, जिना न करना, चोरी न करना, किसी के खिलाफ झूठी गवाही न देना, दूसरों के माल का लालच न करना। खुदा ने ये कवानीन पत्थर की तख्तियों पर लिखे और मूसा उन्हें लेकर अपने लोगों के पास आ गया। तस्वीर नंबर 20, एक सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। लोगों ने खुदा के खिलाफ कुफर बका और उसके कवानीन न माने। खुदा ने उनको सजा दी और उनके दरमियान जहरीले सांप भेजे। बहुत से लोग सांपों के डसने से मरने लगे। लोग मूसा के पास मदद के लिए दौड़े और मूसा ने उनके लिए दुआ की। तब खुदा ने मूसा से कहा, एक सांप बनाकर उसे बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो बच जाएगा। चुनाचे मूसा ने पीतल का सांप बनाया और जितनों ने उस पर निगाह की वो बच गए। मूसा खुदा का एक अजीम पैगंबर था। आज तक बनी इसराइल में उसकी मानिंद कोई नबी नहीं हुआ। 40 बरस तक वो सहरा में इसराइलियों की रहनुमाई करता रहा। मूसा की मौत से पहले खुदा ने उसे कहा, मैं इसराइल में से तेरी मानिंद एक जोरावर नबी भेजूंगा, वो लोगों तक मेरे अहकाम पहुंचाएगा। तस्वीर नंबर 21। यीशु लोगों को खाना खिलाता है। बनी इसराइल कई बरसों तक एक ऐसे नबी की राह तकते रहे जो मूसा की मानिंद हो। यीशु इसराइल की सरजमीन में पैदा हुआ। उसने मूसा की मानिंद लोगों को खुदा के मुतल्लिक तालीम दी। लोग एक सहराई इलाके में उसकी मुनादी सुनने के लिए गए। उन्हें भूख लगी लेकिन उनके पास खाने को कुछ नहीं था। एक लड़के के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थीं। यीशु ने रोटी और मछली ली, खुदा का शुक्र करके तोड़ी, तब उसने इस थोड़े से खाने में से तमाम लोगों को शेयर किया। वो 5,000 से ज्यादा लोग थे। लोगों ने कहा, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा न होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा न होगा। तस्वीर नंबर 22। यीशु मूसा से हम कलाम होता है। मूसा और एलिया दोनों खुदा के नबी थे। वो यीशु से कई साल पहले हो गुजरे हैं। बहरहाल एक दिन वो यीशु के साथ दिखाई दिए। वो तीनों बहुत पुरजलाल दिखाई दे रहे थे। यीशु अपनी मौत के बारे में जानता था और उसने अपनी मौत का जिक्र मूसा और एलिया से किया। यीशु के 3 दोस्तों ने उन्हें आपस में बातें करते हुए सुना। तब एक बादल ने उन्हें ढांप लिया। खुदा की आवाज बादलों में से ये कहते हुए सुनाई दी, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। जब आवाज खत्म हुई तो दोस्तों ने यीशु को अकेला पाया। तस्वीर नंबर 23। यीशु ने हमारे लिए जान दी। लोगों ने यीशु को रद्द किया और उसे मार डाला। सिपाहियों ने उसे लकड़ी की एक सलीब पर कीलों से जड़ा। उन्होंने उसके साथ 2 और आदमियों को भी मसलूब किया। वो चोर और कातिल थे, लेकिन यीशु ने कभी भी खुदा के कानून को नहीं तोड़ा था। हम सब ने खुदा के कानून को तोड़ा है। हम हमेशा की मौत के सजावार ठहरे हैं। फिर भी खुदा सब लोगों से प्यार करता है। वो हमारी दायमी मौत नहीं चाहता, इसीलिए उसने अपने बेटे को भेजा कि हमारे गुनाह उठा ले। मूसा के जमाने में इसराइलियों को बचाने के लिए बर्रे का खून बहाया जाता था। यीशु ने हमें बचाने के लिए अपना खून दिया। जिस तरह मूसा ने पीतल के सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, इसी तरह यीशु भी ऊंचे पर चढ़ाया गया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। तस्वीर नंबर 24। यीशु आसमान में। यीशु की लाश एक गार में रखी गई, लेकिन 3रे रोज यीशु फिर जी उठा। बहुत से लोगों ने उससे बातें की। 40 दिन बाद उन्होंने उसे आसमान पर जाते देखा, जिस तरह आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। यीशु आज भी जिंदा है। मूसा भी आसमान पर जिंदा है। मूसा एक अजीम रहनुमा और खुदा का नबी था, लेकिन यीशु खुदा का बेटा है। वो मूसा से बहुत बड़ा है। मूसा ने बनी इसराइल को समुन्दर के रास्ते से बचा लिया, लेकिन यीशु उन तमाम लोगों को बचाने के लिए आया जो उसके पीछे चलते हैं। एक दिन यीशु उसी तरह फिर वापस आएगा जिस तरह वो आसमान पर चला गया था। वो उन सबको अपने साथ आसमान पर ले जाएगा जो उस पर ईमान रखते हैं। अजीज दोस्तों, क्या आप यीशु के साथ जाने के लिए तैयार हैं? वो आज ही आ सकता है। आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं और नजात पाएं।